हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ इस्कान के भक्तों की ओर से आप सबका शिवालय के प्रांगण में स्वागत है। आज सायंकाल को बच्चों ने बहुत सुंदर भगवद गीता के श्लोक उच्चारण किए। आपके बच्चे आपके द्वारा अगर बचपन में ही ऐसे शास्त्र का श्लोक पढ़ना सीखेंगे तो बड़े होकर उनका चरित्र बहुत उज्जवल रहेगा, उनका भविष्य उज्जवल रहेगा। पहले ऐसे ही हुआ करता था, बच्चों को बचपन से ही ये शिक्षा दी जाती थी। जब से अंग्रेजी शिक्षा आई है तब से हमारी अपनी वैदिक शिक्षा हमारा और उसके संस्कार हमारे समाज के अंदर से आस्ते आस्ते लुप्त होना शुरू हो गए हैं। सिर्फ हमारे नहीं और सब जगहों में भी ऐसे होने लगा है। कैसे भी प्रभुपाद जी की कृपा से एक व्यक्ति ने भारत से वैदिक सनातन धर्म के शिक्षक की शिक्षाओं को पूरे विश्व में ऐसे स्थापित किया और ऐसे प्रचारित किया कि आज केवल भारत मूल के नहीं लेकिन पूरे विश्व के सारे जनता चाहे किसी भी देश की हो, किसी भी जाति की हो, किसी भी विश्वास रखने वाले हो, लेकिन भगवद गीता के इन मूल श्लोकों को और उसके तात्पर्य और अर्थ को अपने जीवन में अपना रहा है। ये सौभाग्य की बात है कि आप तो भारत मूल के हैं, भगवद गीता रामायण भागवत की शिक्षाएं आपके पूर्वजों के द्वारा आपके आपके रक्त में आपके खून में आपके ब्लड में है, आपके लिए ये कोई नई बात नहीं है और आपको गौरव होना चाहिए आपके बच्चे अगर ये शिक्षा ग्रहण करते हैं तो, और आपको भी इसकी शिक्षा को समझना चाहिए। तो आज हम एक बच्चों ने दो चार गीता के श्लोक पढ़े उनको लेकर चर्चा करेंगे। एक श्लोक बच्ची ने पढ़ा चौथे अध्याय भगवद गीता का। चौथे अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान ज्ञान योग, और ज्ञान किसको कहते हैं, ज्ञान किसको कहते हैं? इस दुनिया में जो जानकारी स्कूल में मिलती है, कॉलेज में मिलती है, यूनिवर्सिटी में मिलती है, उसको ज्ञान नहीं कहते। वो क्या है, वो क्या मिलता है? एक हमारे साहित्य में दो शब्द है, विद्या और अविद्या। विद्या का मतलब, असल में विद्या का मतलब वेदों का ज्ञान, और अविद्या का मतलब जो वेदों का ज्ञान नहीं है वो जानकारी। और विद्या किसी के पास है उसकी पहचान क्या है? विद्या ददाति विनयम। अगर विद्या है तो आप में निम्रता होगी, आप में सहनशीलता होगी, आप में सेवा का भाव होगा। विद्या की पहचान है सहनशीलता, निम्रता और सेवा का भाव, ये विद्या की पहचान है। आजकल कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लड़कों के अंदर निम्रता है? मैं आपसे पूछता हूं, आपके बच्चे जो पढ़ के आते हैं उनमें निम्रता है, हम्बुलनेस है? बोलो भैया, सहनशीलता है? नहीं है ना, तो ये विद्या नहीं है, ये अविद्या है। विद्या क्या है, ज्ञान क्या है? मैं कौन हूं ये जानना, आत्मा का ज्ञान ज्ञान है, आत्मा मैं कौन हूं, ये ध्यान है, पूछना चाहिए मैं कौन हूं और फिर मैं किसका हूं, मेरा कौन है। आप सब बड़े बुजुर्ग मंदिरों में जब जाते हैं तो प्रार्थना करते हैं सब, आप सबको ये प्रार्थना आती है, क्या मंदिर में जाके प्रार्थना वेद का मंत्र हम पढ़ते हैं, तुमेव माता पढ़ो, तुमेव माता च पिता तुमेव, भगवान को प्रार्थना करते हैं ना, तुम ही हमारे माता पिता हो, ये हम जाते हैं करते हैं। और एव शब्द का मतलब केवल आप ही हमारे माता हैं, केवल आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारे बंधु, आप ही हमारे सख्या, आप ही हमारा धन, आप ही हमारा सब कुछ हो। तो दूसरी बात, मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, मैं किसका हूं, जो मेरा माता है, पिता है, पालन पोषण करता है, जन्म से पहले जिसने मेरे को पालन पोषण किया वो भगवान परमात्मा श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, मैं तुम्हारा पिता हूं, अहम बीज प्रदापिता। तो ज्ञान की परिभाषा है आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान और इस भौतिक जगत का ज्ञान जिसमें हम रह रहे हैं। ये जो भौतिक जगत कैसे काम करता है, तीन गुणों के द्वारा इस प्रकृति का जो काम चल रहा है, इसका ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, भौतिक प्रकृति का ज्ञान। और आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है, इसको ज्ञान बोलते हैं। ये ज्ञान की परिभाषा है। ये चार चीजें हैं, अगर आपको आती हैं तो आपको ज्ञान है। क्या चार चीजें? मैं कौन हूं? आत्मा। मैं किसका हूं? भगवान। मैं इस संसार में क्यों पड़ा हूं? ये संसार कैसा है? प्रकृति जिसके अंदर हम पड़े हुए हैं, जिसमें हम जी रहे हैं, उसकी जानकारी। पूरा एक अध्याय भगवद गीता में है, गुण त्रिविभाग योग, प्रकृति के तीन गुण जिसके द्वारा हम संसार के अंदर जन्म लेके आते हैं और बंधे हुए हैं। और हमारा जीव का भगवान से क्या संबंध है, इसको ज्ञान बोलते हैं। ये ज्ञान कहां से प्राप्त होगा? पहले तो ये ज्ञान देता कौन है, ये ज्ञान कहां से आता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये ज्ञान मैंने दिया, अहम विवस्वते योगम, ये ज्ञान मैंने दिया। किसको दिया? विवस्वते, विवस्वान को, सूर्य देव का नाम है विवस्वान। भगवान ने ये ज्ञान सूर्य देव को दिया। और फिर ये ज्ञान हमको कैसे मिलेगा? आप लोग इस ज्ञान को चाहते हैं, ये दिव्य ज्ञान, जिससे निम्रता आए, सहनशीलता आए, जिससे हमारे अंदर सद्गुण आवे, जो ज्ञान हमारे को संसार के दुख से मुक्त करके शांति की ओर ले जाए, सुख और आनंद की ओर ले जाए, कि हमको ऐसा ज्ञान चाहिए? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हमको ऐसे ज्ञान की आवश्यकता है? हाँ जी, ऐसा ज्ञान किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं मिलता। और इसलिए ये मंदिर आपके पूर्वजों ने बनाए थे कि यहां ये आध्यात्मिक ज्ञान के केंद्र हैं, ये यूनिवर्सिटी है। ये मंदिर इतना बड़ा सुंदर बना है, इतना बड़ा खर्चा किया है आपके माता पिता दादा दादे ने, क्यों? ये काय के लिए बनाया इतना बड़ा हाल? ये आध्यात्मिक ज्ञान आपको लेने के लिए, सीखने के लिए इसलिए ये बनाए हैं। वो समझदार थे, वो जानते थे कि जो स्कूल कॉलेज का ज्ञान है वो दो टाइम की रोटी कमाने के लिए है, उससे दो टाइम की रोटी कमा लोगे, कुछ काम करना सीख जाओगे, लेकिन शांति और सुख उससे नहीं मिलेगा। आत्मा की जानकारी, आत्मा का साक्षात्कार उससे नहीं मिलेगा, और भगवान की प्राप्ति उससे नहीं होगी। उससे तो, उस ज्ञान से तो निम्रता, आज्ञा पालन भी नहीं होगा। पूरा हमारा सारा धर्म उसका आधार है आज्ञा पालन, बड़ों की आज्ञा पालन को तपस्या भगवत गीता ने कहा है। देव द्वेज गुरु प्रज्ञा, देव भगवान, द्वेज ब्राह्मण, गुरु आचार्य, प्रज्ञा बड़े माता पिता, पूजनम, इन सब का सम्मान करना चाहिए, इनको पूजा करना चाहिए। शरीरम तप उच्यते, ये शरीर की तपस्या है, नहीं चाहते हुए भी करना चाहिए, ये तपस्या है शरीर की। तपस्या का मतलब है कष्ट भी सहे लेकिन आज्ञा का पालन करे। यही तो रामायण का विशेष उद्देश्य ये है कि पिताजी कहे कि ये घर तुमको देता हूं, हाँ पिताजी बहुत अच्छा, इस आज्ञा का पालन करने को आज्ञा का पालन नहीं कहते हैं। पिताजी कहे कि तुमको 14 साल वनवास जाना है, जी हाँ पिताजी मैं जाने को तैयार हूँ, इसको आज्ञा का पालन कहते हैं। कष्ट सह के भी आज्ञा का पालन किया जाए उसको आज्ञा का पालन करते कहते हैं। राज तिलक स्वीकार करना आज्ञा का पालन है ऐसा नहीं, वन में जाना भी उतना ही आज्ञा का पालन है, ये करे तो उसको आज्ञा का पालन कहते हैं। इस दुनिया में आज्ञा का पालन न करने के कारण हम सब दुखी हैं। पहले तो भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहिए, धर्म भगवान की आज्ञा है। जैसे देश के कानून को पालन करने का सबको जरूरी है कि नहीं है, देश का जो नियम है उसको सबको पालन करना है कि नहीं है, लाल बत्ती होती है तो गाड़ी खड़ी करते हैं कि नहीं करते, कुछ देश के नियम है सबको पालन करते हैं उसको अच्छा नागरिक कहते हैं, जो धर्म के नियम का पालन करते हैं उसको अच्छा व्यक्ति कहते हैं, वो धार्मिक व्यक्ति कहलाता है। तो पहले तो धर्म के नियम पालन करना चाहिए और फिर कौन सिखाएगा धर्म के नियम हमको, भगवान ने तो धर्म के नियम दिए लेकिन हमको सिखाएगा कौन। तब एक श्लोक बच्ची ने बहुत सुंदर पढ़ा था, तद विधि, बोलिए तद विधि प्रणिपातेना परिप्रश्नेना सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनां तत्वदर्शनः। ये भगवद गीता का एक महत्वपूर्ण श्लोक है, चौथे अध्याय में 34वां श्लोक बच्ची ने कहा था। अगर ज्ञान प्राप्त करना है और सबको करना जरूरी है, इस जन्म में नहीं तो और किसी जन्म में, 100 जन्मों के बाद, 1000 जन्मों के बाद ये ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। बुद्धिमानी से अभी कर लो तो अच्छा है, नहीं तो कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा, इसके बगैर आगे रास्ता नहीं है, इसके बगैर कल्याण नहीं है, इसके बगैर मुक्ति नहीं है, इसके बगैर भगवान की प्राप्ति नहीं है। अभी कर लो बुद्धिमानी है तो, नहीं तो कभी न कभी तो करना ही पड़ेगा। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, कई जन्मों के बाद ज्ञानी लोग इस निर्णय के ऊपर पहुंचते हैं, इस ये फैसला करते हैं, ये डिसीजन कर लेते हैं। वासुदेव सर्वमिति, भगवान श्री कृष्ण वासुदेव सब कुछ है, सब महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा मिलना मुश्किल है, कई जन्मों के बाद ये निर्णय लेना पड़ता है। लेकिन भाग्य से आपको इस कलयुग में सरलता से घर बैठे ये साधन मिल रहा है, क्या करना चाहिए फिर? तद विधि, इस दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की विधि क्या है, रास्ता क्या है? प्रणिपातेन, प्रणाम कहते हैं नमस्कार को, और पातेन का मतलब है कि जिसको नमस्कार करो उसके चरणों में बैठ जाओ। वैसे पाते का मतलब है नीचे बैठ जाना, प्रकृष्ट रूपेण, मतलब ऐसे नहीं, आपने देखा है कई लोग जाते प्रणाम, बाहर मंदिर से गुजरते लोग सब ऐसे करते हैं, हाँ नमस्कार नमस्कार चलते हुए देखा है मंदिर से सब। एक आदमी ऐसे नमस्कार कर रहा था कहीं, तो हमको आश्चर्य लगा, हमने पूछा भाई कौन सा मंदिर है, शिवाला है? बोलो नहीं,
हनुमान जी का मंत्र बोल नहीं। तो भाई देवी जी का मंत्र बोल नहीं, कृष्ण भगवान लक्ष्मी नारायण का मंत्र नहीं, तो किसका मंदिर है आकर तो बोलो, तुम ऐसे प्रणाम क्यों कर रहे हो यहां? पता है उसने क्या कहा? बोला मेरे ससुराल का घर है, मेरे को तो टीवी बीवी सब यहां से मिला है, मैं यही प्रणाम करता हूं। वही प्रणाम करता है जहां से कुछ मिलता है, ये दुनिया वाले वही प्रणाम करते हैं जहां से कुछ मिलता है। तो रास्ते से जाते हुए बहुत से प्रणाम करते हैं, देखें उस प्रणाम के बारे में भगवान नहीं कहते हैं, बोला प्रणाम करके चरणों में बैठ जाए। भगवान ने प्रणाम में नहीं कहा, प्रणी पाते न कहा, प्रणाम करके चरणों में बैठ के क्या करे? परिपर्शनेन, प्रश्नेन नहीं कहा। भगवान जब बोलते हैं तो प्रश्नेन का मतलब है कुछ पूछे, और लोग क्या पूछते हैं? किसी साधु के पास जाते हैं, साधु तो पता नहीं है कि नहीं है, ब्राह्मण पंडित के पास जब जाते हो तो क्या पूछते हो? बोलिए जरा क्या पूछते हो जाके? महाराज कौन सा ग्रह हमारे ऊपर है, कैसे उतरेगा? ये महाराज ही तो बड़ा ग्रह है सबसे, वो उतरे तो सब उतर जाएंगे। मैं अभी पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले, गत 200-300 साल में लोगों ने धर्म को दुकानदारी बना रखा है, और कहते हैं हमारे बगैर तुम्हारा उधार होने वाला नहीं है। और इस कई सिर्फ एक धर्म नहीं, सब धर्मों का ये हाल है, बहुत बुरा हाल है। तो प्रश्न क्या पूछते हैं लोग जाकर? प्राय लड़की की शादी कब होगी? पंडित महाराज लड़की की शादी कब होगी? हमारा भाग्य कब खुलेगा? यही प्रश्न पूछते हैं जाके। भगवान कहते हैं, ये श्री कृष्ण कहते हैं, ये प्रश्न नहीं, परिपर्शनेन, पर्शनेन नहीं, परिपर्शनेन, पूछो परमात्मा की प्राप्ति के प्रश्न, पूछो भगवत की भगवत प्राप्ति के प्रश्न, पूछो संसार के दुखों से मुक्त होने का रास्ता। आप तो संसार में फंसने के प्रश्न पूछने जा रहे हो, जिससे और फंस जाओगे। एक बार देवी के नवरात्रों के दिन में किसी देवी मंदिर में सत्संग करते हुए हमने एक प्रश्न पूछा, इस भौतिक जगत को दुर्ग कहते हैं, दुर्ग, दुर्ग का मतलब होता है किला, फोर्ट, समझते हैं आप? समझते हैं दुर्ग? हाँ, अरे विष्णु बोलो तो सही, दुर्ग समझते हैं का मतलब क्या? फोर्ट, किला। पहले राजा महाराजा बड़े बड़े किले बनाते थे, और उस किले की अधिष्ठात्री देवी है दुर्गा, वो किला की सुपरजीडेंट है, हम सब उस किले के अंदर हैं। और ये भौतिक जगत को बहुत बड़ा जेल माना जाता है, ये क्या है? जेल। हम सब इस जेल में किसी कर्म के कारण आए हैं, और इस जेल की सुपरिटेंडेंट कौन है बोलो? माता दुर्गा इसकी जेल सुपरिटेंडेंट है। अब हम जेल में हैं, माता जेल सुपरिटेंडेंट है, और माता की पूजा करें तो माता से क्या मांगना चाहिए? एसी लगा के दो कमरे में, एक टेलीफोन हमारे को लगा के दो कमरे में, मेरे घर से भोजन आना चाहिए, जेल का भोजन नहीं खाऊंगा। हाँ, या मेरी पत्नी को यहां रहने दिया जाए, ऐसे कुछ मांगना चाहिए? आपका क्या विचार है? अगर पूजा करें, जेल सुपरिटेंडेंट को जाके प्रार्थना करें तो क्या कहना चाहिए, कि जेल में सुविधा दो या जेल से बाहर निकालो? हाँ जी, जेल से बाहर निकालो और हम सब जाके क्या करते हैं, माता दुर्गा क्या कहते हैं, धन दो, क्या पुत्र दो, परिवार दो, इसका मतलब जेल के अंदर ही हमें सुखी रखो। जेल से बाहर निकलने के लिए तो कोई प्रार्थना करता नहीं। हा? ये बात बहुत बड़ी महत्व की है, समझने चाहिए। तो वो भगवान को प्रश्न, अगर गुरु से प्रश्न पूछना है तो पूछना चाहिए कि यहां से निकलूं कैसे। गुरु जी थे, उसका शिष्य उसके साथ एक ऐसे नगर में गए, ऐसे एक देश में गए जहां का राजा पागल था। और वहां पागल की पहचान क्या थी, एक रुपये का किलो, एक रुपये का किलो बैंगन और एक रुपये का किलो काजू। रुपया किलो काजू, रुपया किलो बैंगन, क्यों भाई, ऐसा कहीं देश देखा है आपने, काजू भी एक रुपया किलो और बैंगन भी एक रुपया किलो। शिष्य ने देखा कि महाराज गुरुजी ये मेरे को यहाँ छोड़ दो, ये काजू रुपये किलो वाला खाऊंगा। बोले पागल है राजा, यहाँ मत रहो, ऐसे देश में जहाँ सस्ती कोई चीज मिले वहां मुश्किल भी आएगी तो बचना मुश्किल हो जाएगा, चलो यहाँ से जल्दी, यहाँ मत बैठो। बोले नहीं गुरुजी, आप भले जाइए, मैं तो यहाँ रहूंगा। बड़ा रुपया किलो काजू खाया। एक दिन किसी को फांसी की सजा थी, गले में रस्सा, तो फांसी बनाई और जिस आदमी को फांसी देनी थी उसके गले में वो फांसी ढीली पड़ गई, पूरी नहीं थी। राजा महाराज इसको फांसी पूरी नहीं पड़ती है। बोला जिसके गले में आए उसको डाल दो। ये केला काजू खा के बड़ा गला मोटा हो गया था, इसके गले में फांसी फिट हो गई। अब बोला चेले को, तुम्हारे को फांसी चढ़ाएंगे। हाँ गुरुदेव, अब हमारी रक्षा करो। हे गुरुदेव, गुरुदेव वहां आया, बोला तुमको कहा था ना कि रुपया किलो काजू खाएगा तो फांसी भी चढ़ना पड़ेगा, तो सस्ता माल खाएगा तो फंसेगा भी। बोला गुरु अब यहाँ नहीं रहूंगा, अब मुझे यहाँ से ले चलो, पर मैं अब यहाँ रहने वाला नहीं। बोला पक्का। राजा के पास गुरु जी गए, आइए आइए महाराज। बोला मैं इस वक्त स्वर्ग से आ रहा हूँ, स्वर्ग के अंदर स्वर्ग के राजा की सीट खाली पड़ी है, आप राजा बनोगे? बोला हाँ हाँ। बोला फिर आप फांसी पे चढ़ जाओ। अच्छा। बोला इसको मत चढ़ो फांसी पे, मेरे को फांसी लगाओ। राजा बोलता है क्योंकि स्वर्ग में सीट खाली है। इतना मूर्ख राजा था, मर गया और शिष्य वहां से बच गया। तो गुरु से क्या प्रश्न पूछना चाहिए, देवी देवता से क्या मांगना चाहिए? बंधन से मुक्त, जेल से बाहर निकलना, परिपर्शनेना, परलोक की प्राप्ति का, भगवत धाम की प्राप्ति का, भगवान के गुण लीला नाम सुमरण का रास्ता पूछना चाहिए। संसार के भोगों और सुख के लिए पूछने की जरूरत नहीं है, वो जो हमारे कर्म में है हमको मिलेंगे। जितना हम कमा के आए हैं पहले उतना हमको मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता। प्रहलाद महाराज कहते अति प्रयास मत करो, कोई दुख के लिए प्रयास नहीं करता। कोई बीमार होने के लिए मंदिर में आज तक नहीं गया, क्या मंदिर में प्रार्थना किसी ने जाकर की है कि मेरी कल टांग टूट जाए, ऐसी किसी ने प्रार्थना की है? हा? नहीं की है ना, फिर भी टांग लोगों की टूट रही है कि नहीं टूट रही है? कोई बीमार होने के लिए मंदिर में प्रार्थना तो नहीं करने चाहता है, लेकिन सब बीमार हो रहे। कोई मरने का मुहूर्त निकालने गया है पंडित की बाके में, कब मरूंगा महाराज बताओ? शादी का तो मुहूर्त निकालने गया है, मरने का मुहूर्त कोई गया है कभी? नहीं गया ना। फिर सब मर रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं जैसे दुख तकलीफ बगैर बुलाए अपने आप आती है, ऐसे धन दौलत पुत्र परिवार तेरे कर्मों का जो है तेरे को मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता। उसके लिए प्रयास मत करो, प्रयास करो भगवान को जानने के लिए, भगवान को पाने के लिए। मानव जन्म में केवल भगवान पाने का रास्ता है और कभी कहीं भी नहीं मिलेगा। दुर्लभ मानव जन्म सत्संग तरवे भव सिंधुरे, ये भव सागर को पार करना है तो मानव जन्म में सत्संग दुर्लभ है, मानव जन्म दुर्लभ है। और मानव जन्म
वैदिक संस्कृति में मिलना उससे भी दुर्लभ है। अफ्रीका के जंगलों में भी मानव पैदा हुए हैं, लेकिन अपने ही बड़े बुजुर्ग बाप को मार के खा जाते हैं जब बूढ़ा होता है तब। वो भी हैं तो इंसान की सूरत में, लेकिन हैं भेड़िए जैसा उनका जीवन है। लेकिन वैदिक संस्कृति में मानव जन्म मिलना बहुत भाग्य की बात है। दुर्लभ मानव जन्म सत्संग तरव भव सिंधु रे भव सागर पार करना है तो सत्संग में जाकर साधु के चरणों में बैठकर भगवान को जानने और पाने का मार्ग पूछो। परिप्रश्नेन, प्रश्न तो पूछो, लेकिन प्रश्न आप पूछो मानो किसी से, महाराज बताइए तो भगवान कैसे प्राप्त होगा। और महाराज कहे बेटा तुम भगवान का नाम रोज लिया करो। महाराज ये काम तो आप ही करना, 10 रुपया ले लो, राम राम आप जपते रहना। तो जो शिक्षा दी वो तो आपने पालन नहीं किया तो फलाभ कहां से होगा। एक आदमी डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने दवा लिखी। कितने का फी आपका? बोला 100 रुपया। बोला डॉक्टर साहब 200 रुपया दियो, दवा भी आप खा लो, दवा भी आप खाओ, 100 के 200 रुपया ले लो। यहां सब लोग ऐसे करते हैं, महाराज ये सब पाठ आप पढ़ लो, 200 के 400 लो, पाठ आप कर लो, जप आप कर लो, बट हमको छोड़ो, हम तो जाते हैं। यहां तो पता नहीं आपके पास है कि नहीं है, भारत में तो पंडित से जप कराते हैं, पंडित से पाठ कराते हैं, खुद दुकान चलाते रहते हैं। बोले पंडित जी हमारे लिए पाठ कर रहे हैं, 200 रुपया दिया, पंडित जी पाठ करता है। वो नहीं, अगर आपने पूछा है कि मुझे भगवान कैसे मिलेगा, तो जो साधु आपको बताए कि राम राम जपो बैठ के, तो बैठ के जपो। सेवया, पहले जाके प्रणाम करके चरणों में निम्रता से बैठो, बड़े निम्रता से, और सीखने के लिए भगवान को प्राप्त करने का रास्ता पूछो, और जब वो बताए तो उसको अपनाओ, उसको उस सेवा को स्वीकार करो। सेवया, इसका मतलब आप आए यहाँ, ये भक्त बैठे हैं आपके साथ, ये सब साधु हैं, गुरु शक्ति 30 साल से ऊपर हो गया, भगवान के नाम का कीर्तन करके भगवान की सेवा में है। ये सांबादास, वो दामोदर दास आपके, ये सब भक्त हैं, इनके पास आप जाओ कि सुखी होना है, हमको भगवान को प्राप्त करना है, कैसे हो जाए, तो ये आपको कहेंगे भैया हरे कृष्ण जपो। अब आपको जपना चाहिए तब ये आगे आपको रास्ता बताएंगे। उपदेशन्ति ते ज्ञानम, जब आपको जो कहा जाए वो करोगे तो फिर आपको उपदेश, उपदेश का अर्थ असल में ये होता है, एक उपदेश का अर्थ है कुछ बताएंगे, उप का मतलब ऊपर, देश का मतलब भगवान का धाम, वो ऊपर भगवान के धाम के बारे में आपको बताएंगे। बोला बताएंगे? बोला नहीं बताएंगे नहीं, दिखाएंगे। कैसे? उपदेशन्ति ते ज्ञानम, ज्ञानीनाम तत्व दर्शन, उन्होंने तत्व का दर्शन किया है और आपको वो ऊपर का देश, जो ऊपर का देश है उसका दर्शन कराएंगे, वो आपको वो उपदेश देंगे। उपदेश का मतलब ये नहीं है किसी को प्रवचन करना, नहीं, उपदेश का मतलब इस संसार के बंधन से मुक्त करना और भगवान के धाम पहुंचाने का रास्ता सिखाना। तो तत्व दर्शन किस चीज का? तत्व किसको बोलते हैं? कौन सा तत्व दर्शन किया है? किस तत्व दर्शन को वो जानते हैं? ये भी भगवद गीता में लिखा है, इसी 4th अध्याय में, बोलिए जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति माम एति सो अर्जुन। अब ये श्लोक में भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, जो मेरे इस दुनिया में जन्म लेने को अभी आने वाली है जन्माष्टमी 10 अगस्त को, तो 5025 साल पहले के 5325 साल पहले भगवान श्री कृष्ण इस धरती के ऊपर वृंदावन में मथुरा में प्रकट हुए। जन्म कर्म और भगवान ने 11 साल तक वृंदावन में दिव्य बाल लीलाएं की, फिर मथुरा में जरासंध के साथ 18 बार युद्ध किया, फिर द्वारका की नगरी बसाई, फिर कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लिया। ये जन्म कर्म च दिव्यम, उसको जो मानता है कि संसारी लोगों जैसा नहीं है वो दिव्य है, एवं यो वेति तत्वतः, उसको जो तत्व रूप से जानता है वो इस संसार के बंधन में नहीं पड़ता। अर्जुन वो उपदेशंती, वो ऊपर के देश गोलोक धाम में आ जाता है, उसको वापस इस संसार में नहीं आना पड़ता। इस तत्व को जानता है, जो किस तत्व को, भगवान का जन्म आम व्यक्ति के जन्म जैसा नहीं होता। अब जन्माष्टमी आने वाली है, भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी इसलिए कहते हैं कि अष्टमी के दिन उनका जन्म हुआ, गोकुल अष्टमी उसको बोलते हैं, क्योंकि गोकुल में जन्म हुआ, गोकुल में उस दिन गोकुल के अंदर भगवान श्री कृष्ण के जन्म का दिन मनाया गया। कंस के कारागृह में तो नहीं मनाया गया, कंस के जेल खाने से वसुदेव गोकुल में कृष्ण को छोड़ के आए, तो गोकुल अष्टमी बोलते हैं जन्माष्टमी का दूसरा नाम। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म क्या आम बच्चे की तरह हुआ था? कभी शास्त्र में आपने ठीक तरह से पढ़ा है कृष्ण के जन्म के विषय में? कई सालों से जन्माष्टमी मनाते आ रहे हैं, लेकिन कभी ध्यान से पढ़ा है कि कृष्ण का जन्म कैसे हुआ? उसके दिव्य जन्म के तत्व के बारे में कौन शिक्षा देगा? तद विधि, उसकी विधि ये प्रणी पाते न, जाओ प्रणाम करके चरणों में बैठ जाओ, बड़े निम्रता से जिज्ञासा करो, पूछो तत्व को जानने की, कृष्ण के नाम लीला गुण, राम के नाम लीला गुण को जानने की। और जो उस तत्व को जानता है, उसकी दिव्यता को जानता है, उसकी अलौकिकता को जानता है, उसके ट्रांसेंडेंटल पोजीशन को जानता है, उपदेक्षन्ति, वो तुमको ऊपर उठा लेगा, वो तुमको संसार के अंदर डूबने नहीं देगा। भवामी निचरात पारत मई आवेशित चेतसाम, जो ऐसे भगवान का शरण ले लेता है, भगवान उसको संसार सागर से ऐसे उठा लेता है, उसको डूबने नहीं देता है। सागर से तैरना है, भव सागर से पार होना है, तो भगवान के भक्तों के संग में बैठकर भगवान को जानने की जिज्ञासा करो। इस दुनिया में भगवान शब्द सब कहते हैं, लेकिन भगवान कौन है कोई नहीं जानता। भगवान कौन है, सब लोग भगवान के ऊपर अपना कुछ न कुछ राय देंगे, लेकिन तत्व से भगवान कौन है इसको जानने वाले 1% भी लोग नहीं है। कौन भगवान है? भगवान निराकार है, जान छूट गई, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, भगवान सब जगह है। कौन है भगवान? इस प्रश्न का उत्तर आप 100 आदमी से पूछे, 100 उत्तर अलग अलग देंगे। शास्त्र से कोई नहीं बोल जानता भगवान कौन है, अपने मन से कुछ भी कहते हैं। पहला ये सीधा सा एक सरल प्रश्न, भगवान कौन है भाई, किससे पूछें, कौन बताएगा हमारे को भगवान कौन है? इस दुनिया को किसने बनाया? हाँ जी, दुनिया को कौन बनाता है, दुनिया की सृष्टि कौन करता है? हाँ जी, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी इस संसार की सृष्टि करते हैं, जहां मालूम है ना सबको, ब्रह्मा सृष्टि करता है, शंकर जी प्रलय करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, ये तो सब जानते हैं ना, त्रिदेव। तो ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, तो सृष्टि जब थी नहीं तो ब्रह्मा पैदा हुआ, तो जहां से ब्रह्मा पैदा हुआ ब्रह्मा ने तो भगवान को देखा होगा ना। हाँ जी, देखा होगा कि नहीं देखा होगा?
ब्रह्मा जी ने भगवान को तो देखा होगा ना, और कोई था नहीं, भगवान था और ब्रह्मा पैदा हुआ। तो ब्रह्मा ने बड़ा प्रयास किया और तपस्या की, दो शब्द सुने ब्रह्मा जी ने, तपा तपस्या करो, और 100 साल तक दिव्य ब्रह्मा जी ने गोपाल मंत्र का उच्चारण किया शुद्ध सरस्वती से सुनकर, तब साक्षात भगवान का दर्शन किया। जब भगवान से हाथ मिलाया ब्रह्मा जी ने, तब ब्रह्मा जी ने अपने मुख से भगवान कौन है ये एक सुंदर से पुस्तक के अंदर ब्रह्मा जी ने लिख दिया ब्रह्म संहिता में। अब बोलिए ईश्वर परमा कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। ये ब्रह्मा जी के मुख से श्लोक निकला भगवान का दर्शन करके, और ब्रह्मा जी कहते ईश्वर जो नियंता है, जो मालिक है, परम जो सब ईश्वरों का ईश्वर है, परम ईश्वर, एक ईश्वर है शब्द, एक परमेश्वर है, एक आत्मा है, एक परमात्मा है, एक ब्रह्म है, एक पर ब्रह्म है। तो जो परमेश्वर है ईश्वर परम कौन है, कृष्ण। कैसा रूप है उसका, सच्चित आनंद विग्रह, उसका जो रूप है नित्य है, आनंदमय है, ज्ञान का सागर है। जब कुछ नहीं होता है, जब दुनिया शुरू ही नहीं हुई थी, आदि अनादि, जब कुछ नहीं रहेगा, गोविंद, तब भी गोविंद रहता है। आ सर्व कारण कारणम, जो भी इस दुनिया का कारण है उन सब कारणों का वो आदि कारण है, और उसका कोई कारण नहीं है, वो स्वराट है, वो स्वतंत्र है। ये ब्रह्मा जी के शब्द है, और ब्रह्मा जी के मुख से वेद निकलता है, चारों मुखों से ब्रह्मा जी के वेद निकलता है, और हम सब वैदिक धर्म को पालन करते हैं, और ये ब्रह्मा जी के शब्द हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ब्रह्मा जी के शब्दों को, और फिर उसी ब्रह्मा जी से, उसके मानसिक हृदय से उत्पन्न हुए पुत्र नारद ने जाकर पूछा कि कलयुग भयंकर आ रहा है पिताजी, इस कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे होगा, इन लोगों को कलयुग के कष्ट से कैसे बचाया जाए, संकट से कैसे उबारा जाए, मुश्किल से कैसे निकाला जाए। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए, हर एक अपने सुख के लिए पूछता है, लेकिन नारद आप दुनिया के भले के लिए पूछते हो, जो दूसरे के भले के लिए पूछता है वो महान है। अपना तो दुनिया में सब कुछ भला चाहते हैं, लेकिन दूसरे का भला चाहे वो महान आदमी है। नारद आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। और तब ब्रह्मा जी ने कहा, नारद कलयुग के लोगों के लिए भवसागर पार करने का जो जहाज है, जो शिप है, वो ये 16 अक्षर का मंत्र है। ये ब्रह्मा जी के मुख से निकला नारद को। बोली हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम् नाम नाम कली कलमश नाशनम। ब्रह्मा जी कहते हैं ये 16 अक्षर कलयुग के सारे कलमश पाप ताप संताप को नाश कर दें। मैं सारे वेदों के अंदर छानबीन किया है, यही मुझको वेदों का सार मिला है। और भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वैदेश सर्वेर अहमेव वेद्यो, सारे वेदों का उद्देश्य है मुझे जानना। श्री कृष्ण कहते हैं कृष्ण को जानना वेदों का उद्देश्य है। और इस मंत्र को जब नारद जी ने कहा, नारद जी ने सुना, तो नारद जी ने पूछा पितामह इसको जपने के लिए कोई टाइम, कोई नेम, कोई समय, क्योंकि गायत्री मंत्र जपने का समय है,
वो केवल सूर्य उगने से पहले जपना चाहिए और सूर्यास्त के बाद जपना चाहिए, नहीं तो मध्याह्न में 12 बजे जपना चाहिए, बाकी किसी वक्त जपने का कोई लाभ नहीं। हाँ, वेद का मंत्र नेम है, स्नान कर आसन में बैठकर मंत्र की शुद्धि करके फिर जपना है उसको। कुछ मंत्रों का कुछ नेम है, कुछ टेम है। तो नारद ने कहा इतना महान मंत्र है तो फिर इसका कोई नेम टेम है? पिताजी इसको कौन जपे, कब जपे, कहां जपे? तब ब्रह्मा जी ने कहा बेटा कलयुग के लोगों से नेम टेम की पालन नहीं होगा, नहीं पालन कर पाएंगे, इसलिए इस मंत्र को जपने के लिए कोई नियम नहीं, जब चाहो जहां चाहो जो चाहे जप सकता है और भगवान को सुलभता से प्राप्त कर सकता है। ये स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब 526 साल इस धरती के ऊपर आए तो उन्होंने अपने मुख से ऐसे ही कहा नाम नाम अकारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रापित नैमित सुमरणे न काल। आपने अपने नाम के स्मरण के लिए कोई नेम टेम नहीं बनाया है, आपने सबको कभी भी कोई भी कहीं भी जपे, किसी देश का हो, किसी जाति का हो, नीच हो ऊंच हो, इसमें भगवान के लिए, भगवान के मंदिर में आने के लिए कोई रोक नहीं, भगवान का प्रसाद खाने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं, भगवान का नाम जपने के लिए मना नहीं, कोई भी कहीं भी किसी वक्त भी भगवान के नाम का जप कर सकता है। नारद जी ने जब ये सुना तब नारद जी बड़े प्रसन्न होके बिना बजाते हुए गाते हैं नारद बनाए बिना हरे कृष्ण हरे राम पंचमुखी शंकर बोले चतुर्मुखी बिना बोले गाइए माइक में गाइए गाइए माइक में गाइए ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे कृष्णा कृष्णा हरे हरे ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे कृष्णा कृष्णा हरे हरे महादेव पंचमुखे राम राम हरे हरे महादेव पंचमुखे राम राम हरे हरे हे ब्रह्मा भोले चतुर्मुखे कृष्णा कृष्णा हरे हरे महादेव पंचमुखे राम राम हरे हरे नारद हरे कृष्णा हरे कृष्णा।